ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
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 हम लोग पढ़ रहे हैं श्रीमद् भागवतम 11वां स्कंद 12वां अध्याय और 15वां श्लोक। तस्मात् त्वं उद्धव उत्सृज्य चोदनां प्रतिचोदनम् प्रतिचोदनम् प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च श्रोतव्यं श्रुतमेव च मामेकम् एव शरणम् आत्मानं सर्वदेहिनां याहि सर्वात्मन याहि सर्वात्म भावेन मया स्याहि यकुतो भय। ओके, ट्रांसलेशन इंग्लिश में हो गए, मैं इंग्लिश में पढ़ दूंगा बट फिर मैं हिंदी में एक्सप्लेन करूंगा इसको। देयरफॉर माय डियर उद्धव, abandon the Vedic mantras as well as the procedures of supplementary Vedic literatures and the positive and negative injunctions. Disregard that which has been heard, that which is to be heard. Simply take shelter of me alone, for I am the Supreme Personality of Godhead, situated within the heart of all conditioned souls. Take shelter of me wholeheartedly and by my grace be free from fear in all circumstances. ओके, सो मैं इसको हिंदी में एक्सप्लेन कर दूंगा प्रॉपर इंग्लिश में। ओम अज्ञानातिमिरंदस्य ज्ञानांजनशलाकाय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनि गौरवाणी प्रचारिणेर् विशेषशून्यवादी पाश्चादेष्टारिणे। सो ये श्लोक भगवान कृष्ण बोला है उद्धव को, जब उद्धव भगवान कृष्ण अपनी लीला समाप्त करने वाले हैं क्योंकि भागवतम का आखिरी स्कंद है ना। सो भगवान कृष्ण ने डिसाइड कर लिया कि मैं अपने धाम वापस चला जाऊंगा, अब मैंने लीलाएं कर ली हैं। धर्म संस्थापना अर्थाय संभवामी योग्य हो गए, धर्म की स्थापना हो गई और दर्शयामी तद्विदम लोके, मैंने अपने भक्तों को अपने दर्शन दे दिया है और अपने व्रज के भक्तों को प्रेम दान कर दिया, सब कुछ हो गया बेसिकली, जो डिसाइड करके आए थे सब कुछ हो गया। नाउ इज बाइंडिंग अप एवरीथिंग। और मगर जाने से पहले वो उद्धव जी को कुछ इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं इस 11th कैंटो के 12th चैप्टर के 14-15 श्लोक में। और बहुत काफी डिस्कशन हुई है उद्धव और भगवान के बीच में, मगर ये श्लोक जो दो श्लोक हैं ये उस सारे डिस्कशंस का सार है, क्योंकि भगवान ने बहुत कुछ डिस्कस किया उद्धव से, ज्ञान योग, ध्यान योग, कर्म योग, बहुत सारी चीजें हैं शास्त्रों में। मगर अब यहां पे भगवान कह रहे हैं तस्मात् त्वम उद्धव उत्सृज्य। उत्सृज्य मतलब होता है छोड़ दो, उत्सृज्य छोड़कर, बेसिकली छोड़कर। सो भगवान कह रहे तस्मात, इसलिए उद्धव, किस लिए तस्मात मतलब इसलिए, तो इसलिए क्यों कह रहे हैं, इसलिए तुम सब कुछ छोड़ दो, क्योंकि इसके पिछले श्लोक में भगवान ने अपनी गोपियों की बात की है। भगवान ने बोला है कि अपने पिछले श्लोक में भगवान कह रहे हैं कि मत कामारमणम जारम स्वरूपम अविदलो अबला, कि मेरी जो गोपियां हैं वृंदावन में स्पेशली, वो मेरी हाईएस्ट डिवोटीज है। और अगर तुम्हें मुझे प्राप्त करना है तो वैसे तो अलग अलग भक्तों ने भजन किया है, साधना की है, कई योगीज हैं, कई ज्ञानीज हैं, अलग लोगों ने अलग अलग तरीके किए, मगर अगर तुम्हें मुझे प्राप्त करना है जिस तरह मैं हूं तुम्हारे सामने, अगर तुम्हें मुझे प्राप्त करना है सबसे पूर्ण रूप से प्राप्त करना है, क्योंकि योगी ज्ञानियों को अपूर्ण रूप में प्राप्त होते हैं भगवान, तो मेरी गोपियों ने जिस तरह भक्ति की उस तरह भक्ति कर, वरना मेरी प्राप्ति नहीं होगी। मगर क्वेश्चन है कि गोपियों ने भक्ति कैसे की है, वो क्या सीक्रेट है गोपियों की। ऑफ कोर्स ऐसा तो नहीं है कि हम लोग वो क्या था, वो था DIG जो राधा बन के घूम रहा था, पांडे DIG क्या था नाम था उसका, तो पूरा नाम क्या था उसका, पांडे था ना जो राधा बन के घूम रहा था। ऑफ कोर्स हम लोग ऐसा नहीं करने वाले हैं, दैट्स कंप्लीट नॉनसेंस, नॉट गोइंग टू बिकम राधा, और वो आर्टिफिशियल चीज तो हम नहीं कर सकते। बट गोपियों के पास, गोपियां, भगवान कह रहे हैं गोपियों को फॉलो करो, गोपी भरतूपत कमले और दास अनुदास अनुदास, उनसे सीखो भक्ति कैसे करनी है। बट क्वेश्चन है कि उनसे क्या सीखे, क्या औरत बन जाए, दैट्स कंप्लीट नॉनसेंस हो तो, या वृंदावन में जाके हम इधर उधर गोपियों की तरह जंगलों में जाके भगवान को ढूंढे, वो भी कंप्लीट नॉनसेंस है। हम उस प्लेटफॉर्म पे नहीं है। सो गोपियां हमें क्या सिखाना चाहती हैं, गोपियों के द्वारा भगवान हमें क्या सिखाना चाहते हैं। भगवान इन दो श्लोकों में गोपियों की भक्ति बता रहे हैं कि जिससे हम उस भक्ति का थोड़ा सा अंश अपने जीवन में उतार पाए। पूरा तो नहीं कर पाएंगे ना, क्योंकि वो तो भगवान की परम भक्त है। प्रभुपाद कह रहे हैं राधा रानी भगवान की बेस्ट डिवोटी है। सो हम एक रात में बेस्ट तो नहीं बन सकते, वर्स्ट से बेस्ट नहीं बन पाएंगे हम। सो कोई प्रॉब्लम नहीं है। भगवान कह रहे हैं मेरी गोपियों में कौन सी भक्ति है, तस्मात तुम उद्धव उत्सृज्य, इसलिए उद्धव, भगवान वर्ड इस्तेमाल कर रहे हैं इसलिए उद्धव, क्योंकि मेरी गोपियों ने मुझे पूर्ण रूप से प्राप्त किया, इसलिए गोपियों के चरणों का अनुसरण करो। तो कौन है गोपी, उत्सृज्य, गोपियों ने सब कुछ छोड़ दिया। अब क्या छोड़ दिया सब कुछ, मतलब आर वी टू लीव, हमें अपनी फैमिली छोड़नी है या हमें अपने अपना घर त्यागना है या अपने कपड़े त्यागने हैं, मतलब करना क्या है। सो क्या छोड़ना है, उत्सृज्य क्या छोड़ना है, उद्धव ने पूछा क्या छोड़ना है। भगवान गोपियों ने ऐसा क्या छोड़ दिया जो कि आपको प्राप्त कर गई, क्योंकि नो गेन विदाउट पेन, नो गॉड, भगवान की प्राप्ति बिना त्याग के नहीं हो सकती, असंभव है। बिना सेवा, बिना सैक्रिफाइस के भगवान की प्राप्ति नहीं होती, कुछ ना कुछ छोड़ना पड़ता है नहीं कुछ पाने के लिए। सो क्या छोड़ दिया, तो भगवान कह रहे हैं चोदनम प्रतिचोदनम। सो उदनम, उदनम मतलब होता है कि उदनम तो चलो, चोदनम मतलब होता है कि इंस्पायरिंग, उत्साह देना। तो शास्त्रों के जो नियम है, शास्त्रों में कुछ यम है कुछ नियम है, कुछ करना है और कुछ नहीं करना, यम नियम, जैसे डॉक्टर कहता है ये दवाई खा लो और ये परहेज करो, तो शास्त्रों में कुछ इस तरह से नियम दिए गए, भाई ऐसा करना है ऐसा नहीं करना, ओके मंदिर सुबह उठ के जाना है और बिना नहाए नहीं जाना, फॉर एग्जाम्पल। सो आप धर्मशास्त्र पढ़ोगे, कई तरह के धर्मशास्त्र हैं, मनु संहिता, आश्वलायन स्मृति, गोविला स्मृति, शांडिला स्मृति, बहुत सारे धर्मशास्त्र पढ़ लो, तो उसमें धर्मशास्त्रों में केवल लिस्ट दिया है ऐसा करना है ऐसा नहीं करना, ऐसा करना है ऐसा करना है ऐसा नहीं करना, ब्रह्मचार्य के ये ब्रह्मचार्य के लिए ये नियम है, गृहस्थ के लिए नियम है, और वानप्रस्थ के लिए, संन्यास के लिए, शूद्र वैश्य ब्राह्मण, सब कैटेगरीज करके सबके नियम दिए हैं कि इसे सब लोग अपनी अपनी प्रॉपर ड्यूटीज करते रहे। स्त्री के क्या नियम है, हस्बैंड के क्या रूल्स रेगुलेशंस हैं, क्या खाना है क्या नहीं खाना, भगवान कह रहे हैं सबको छोड़ दो। ना ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट है, मतलब सबको छोड़ दें क्या, शास्त्रों के सारे नियमों को छोड़ दें, ये कैसी एडवाइज है, मगर है, इनफैक्ट है। तो इसको कैसे समझे, पॉइंट है, इसको समझे कैसे? ऊपर से भगवान ये भी कह रहे हैं प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च, कृष्णा कह रहे हैं कि शास्त्रों में दो दो रास्ते भी बताए गए, एक प्रवृत्ति और एक निवृत्ति। एक तो नियम है, अपने स्थान के अनुसार क्या नियम फॉलो करना है, स्थान मतलब अपने आश्रम और वर्ण के अनुसार। सो हाउस होल्डर्स, ब्रह्मचारी, ओके गुड, स्त्री पुरुष, ये जनरल नियम है। मगर शास्त्रों में दो दो रास्ते हैं, ये भी छोड़ दिया हमने, शास्त्रों में दो रास्ते हैं प्रवृत्ति निवृत्ति। सो एक रास्ता होता है प्रवृत्ति, प्रवृत्ति मतलब वो रास्ता जिस रास्ते पे चल के आप भगवान को प्राप्त कर सकते हो, मगर साथ साथ आपकी भोग इच्छाएं भी पूरी होती रहती हैं, उसको प्रवृत्ति रास्ता कहते हैं। प्रवृत्ति, वृत्ति मतलब कुछ करना, प्रवृत्ति। जैसे गृहस्थों के कुछ नियम है, तो धर्मशास्त्र में कहा है कि भी हस्बैंड को स्त्रियों को ऑर्नामेंट्स देने चाहिए, अच्छे अच्छे कपड़े देने चाहिए, अच्छा खाना खिलाना चाहिए, वरना वो सेटिस्फाई नहीं होगी। और स्त्रियों को अब हस्बैंड की पूरी तरह सेवा करनी चाहिए, नहीं? सो इसको कहते हैं प्रवृत्ति रास्ता, ठीक है? आप आपकी इच्छाएं भी पूरी हो रही हैं, मगर इच्छाएं शास्त्रों के दायरे में रह के पूरी हो रही हैं, और धीरे धीरे भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। क्यों? क्योंकि आप अपनी इच्छाएं अपने मन से पूरी नहीं कर रहे, कैसे पूरी कर रहे हो? भगवान के आदेशों के अनुसार। सो के गुड़ी प्रवृत्ति रास्ता है, मगर मनु सम्यता कह रही है निवृत्ति तु महाफलम। एक रास्ता प्रवृत्ति है, क्योंकि हर व्यक्ति इच्छाएं छोड़ नहीं सकता एकदम से, मगर अगर कोई इच्छाएं छोड़ दे सारी, निवृत्ति निवृत्ति, तो उससे बहुत ज्यादा स्पीड बढ़ जाएगी भगवान के पास आने की। ओके गुड, निवृत्ति के लिए क्या है? फॉर एग्जाम्पल गंगा माता गोस्वामी, बहुत बड़ी भक्ति, जब वो अपने गुरु के पास पहुंची वृंदावन में, तो उनके गुरु ने कहा देखो तुम तो स्त्री हो, तुम्हारा शरीर बहुत कोमल है, तुम जाके विवाह करो और आराम से रहो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, शास्त्रों में ये भी दिया है, शास्त्रों में दिया है। तो गंगा माता ने समझने का मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है सब में। तो उन्होंने कहा ठीक है चलो वेल, तुम एक महीने रहो और भिक्षा में जो खाना मिलेगा वो लेके खाओ और रोज 64 माला करो, फिर मैं सोचूंगा तुम्हें दीक्षा दे। तो उन्होंने पूरा किया और टेस्ट में पास हो गए, तो उनको दीक्षा दी, तब उनका नाम गंगा माता गोस्वामी नहीं पड़ा। सो यू सी, वो निवृत्ति वाला पाथ, उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया, उन्होंने अपना अपना गृहस्थ, अपना अपनी जो डिजायर है ब्यूटीफुल बनने की, ये फीमेल्स में होती है, या हस्बैंड चिल्ड्रन की, सब कुछ छोड़ के फुल गुरु को सरेंडर कर दिया, और ओके त्याग का रास्ता, उसको निवृत्ति रास्ता कहते हैं। शास्त्र में दोनों रास्ते, सुखदेव गोस्वामी जैसे ही पैदा हुआ छोड़ के निकल गए, मतलब पैदा होते ही, यू कैन इमेजिन, उनके घर में रुके भी नहीं, बिना कपड़े पहने निकल गए, वे माया पकड़ लेगी। एक ये रास्ता है। दूसरा रास्ता है कि कहीं भागवत में कहीं गृहस्थ आते हैं जिन्होंने गृहस्थ आश्रम किया और फिर वानप्रस्थ किया, धीरे धीरे आगे बढ़े, नहीं वो भी रास्ता गुड। भगवान कह रहे दोनों छोड़ दो, ना निवृत्ति ना प्रवृत्ति, तो करें तो क्या करें? दिस इज अ फनी एडवाइस, फनी एडवाइस है भगवान कह रहे। और फिर भगवान कह रहे श्रोतव्यम श्रुतम एव च, जो अभी तक तुमने सुना है शास्त्रों में और जो तुम सुनने वाले हो आगे, जो सुनोगे और ऋषियों से, वो भी सब कुछ छोड़ दो, जो भी मैंने डिस्कस किया अभी तक वो भी भूल जाओ सब कुछ। तो क्या करना है फिर? खत्म ही हो गया, फिर क्या करोगे? आपने शास्त्रों के सारे नियम छोड़ दिए, आपने प्रवृत्ति रास्ता छोड़ दिया, निवृत्ति भी छोड़ दिया, त्याग का भी रास्ता छोड़ दिया, आपने जो सुना है, जो भी शास्त्रों में पढ़ा है, 1000 शास्त्र हैं, 1000 इंस्ट्रक्शंस हैं, लोग कंफ्यूज ऐसे हो जाते हैं और कह रहे हैं सब कुछ छोड़ छाड़ के, तो क्या करें फिर? व्हाट्स द पॉइंट? कोई एडवाइस है, क्या करें, क्या करें? पहला क्वेश्चन है क्या करें, दूसरा क्वेश्चन है कि भगवान सबको छोड़ने को क्यों कह रहे हैं, मतलब शास्त्रों को ही छोड़ दो, बड़ी अजीब सी बात है। शास्त्रों को छोड़ तो नास्तिक छोड़ते हैं, नहीं असुर लोग छोड़ते हैं, तो शास्त्रों का त्याग कर देता है वो तो असुर है, भगवान गीता में नहीं कह रहे? या शास्त्र में देव उत्सृज्य वर्तते काम कारत न सिद्धि मवापनोति न सुखम न पराम गति। तो जो शास्त्रों को छोड़ता है उसको तो इस संसार में ना सुख मिलता है ना परम गति मिलती है, भगवान ने खुद ने गीता में कहा है। और यहां पे कह रहे हैं शास्त्रों को छोड़ दो, कॉन्ट्रडिक्टरी कॉन्ट्रडिक्शन आ रही है ये, नहीं खुद ही भगवान अपनी बातों को काट रहे हैं। सो उद्धव कह सकता है भगवान आप पागल हो गए हो, कह सकता है। या आजकल के लोग ऐसी तो है, मतलब हजार चीजें सुनते हैं टीवी में और फिर कहते हैं यार वो कुछ कह रहे हैं, वो कुछ कह रहे हैं, वो कुछ कह रहे हैं, कुछ कह रहे हैं, कन्फ्यूज होकर बैठ जाते हैं। वो कहते हैं हम कुछ नहीं करेंगे, सब ऐसे ही बकवास लोग हैं, कोई कुछ कहता है, मगर एक्चुअली आप बकवास हो, क्योंकि आपने शास्त्रों को किसी टीचर के अंदर बैठ के नहीं समझा है। शास्त्रों में कॉन्ट्रडिक्टरी एडवाइस हो सकती है, मगर उसको समझने के लिए थोड़ा सा टीचर, थोड़ा साधु संघ चाहिए होता है, अदरवाइज नहीं समझ आएगा। नहीं एक ही टीचर बोल सकता है कि कि 1+1 2 होता है, 1-1 0 होता है और 1-2 गलत है नर्सरी क्लास में, मगर हायर क्लास में 1-2 -1 होता है। वो भी वो सेम बोल सकता है, वो नर्सरी कहेगा ये -1 कहाँ से आ गया, आपने तो मेरा आंसर गलत किया था बचपन में और अब सही कर रहे हो, मतलब ये तो खुद ही कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है ना अपने आप को। सो ये दो क्वेश्चंस का आंसर क्या है, हमें क्या करना है और भगवान ऐसे क्यों अपनी बातों में कॉन्ट्रडिक्शन कर रहे हैं। इसको समझने के लिए सबसे पहले कौन सा क्वेश्चन लें, क्या करना है, भगवान अपनी बातों को कॉन्ट्रडिक्ट क्यों कर रहे हैं, कौन सा क्वेश्चन आंसर करना चाहिए, पूछ रहा हूं मैं आपसे, मतलब मैं तो पूछ रहा हूं। हाँ पहले कॉन्ट्रडिक्ट होना चाहिए नहीं क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अगर आप पहले पूछो क्या करना है भगवान से सुनोगे तो अभी तो हमें भगवान भी डाउट आ गया है। सो अगर भगवान अपनी पोजीशन क्लियर नहीं करेंगे तो उनकी बात भी हम एक्सेप्ट नहीं करने वाले, नहीं है नहीं, बिकॉज इफ यू डाउटिंग ऑन समबडी यू कैन एक्सेप्ट हिज वर्ड्स। सो क्यों कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं, क्यों शास्त्रों को उत्सृज्य कहने कह रहे हैं, क्योंकि शास्त्रों में ही दो तरह के रास्ते हैं, एक होते हैं मर्यादा, एक मर्यादा का रास्ता होता है और दूसरा रास्ता है भक्ति या शरणागति। सो मर्यादा का रास्ता है कर्मयोग, ज्ञान योग, ध्यान योग, ये मर्यादा का रास्ता आता है। मर्यादा मतलब धीरे धीरे व्यक्ति आगे बढ़ता है, कर्मयोग, ज्ञान योग, ध्यान योग, प्रभुपद गीता में भी कह रहे हैं ये रास्ता होता है। और दूसरा रास्ता है भक्ति, डायरेक्ट भगवान की शरण। सो ये दो रास्ते हैं, जो लोग डायरेक्ट भक्ति नहीं ले पाते उनके लिए मर्यादा का रास्ता है, शास्त्र फॉलो करते हैं, धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, पहले कर्म योग करेंगे फिर ज्ञान योग करेंगे फिर ध्यान योग, फिर धीरे 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 आगे बढ़ते रहेंगे, स्लो है। तो उस मर्यादा के रास्ते में शास्त्रों के यम नियम है, प्रवृत्ति निवृत्ति है और बहुत कुछ समझना पड़ता है, धर्म समझना पड़ता है और फिर धीरे 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 आगे बढ़ते हैं। बट द पॉइंट इज कि मर्यादा का रास्ता है मगर कलयुग में एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि कलयुग में लोगों की लाइफ बहुत छोटी है। अब शास्त्र फॉलो क्या करोगे, समझने में पूरी लाइफ निकल जाएगी, फॉलो तो बहुत दूर की बात है। एक धर्म शास्त्र समझना ही मनु समेता या पूरे जीवन पर समझ लो बहुत बड़ी बात है, कभी कुछ कहे कभी कुछ कहे कभी कुछ कहे कभी कुछ कहे, वहां पर इट टेक्स टाइम, टाइम बहुत लगता है। सो अल्प आयु है, अल्प बुद्धि है, अल्प इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट भी तो पूरा नहीं है। सो इसलिए भगवान ने गीता में बोला है कि ठीक है सारी चीजें हैं बट तुम नहीं कर पाओ, इसलिए भगवान कह रहे हैं इनको छोड़ दो, इसलिए नहीं कि गलत है, कॉन्ट्रडिक्ट नहीं कर रहे हैं। यू सी भगवान ने गीता में कहा शास्त्रों को फॉलो करो, जो शास्त्रों को फॉलो नहीं करता उसको सुख और शांति कभी नहीं मिलेगी, मगर कृष्णा गीता में ही बाद में समझा रहे हैं कि भाई ऐसा नहीं है कि मैं कह रहा हूं कि गलत है, क्योंकि मैंने ही शास्त्रों में बोला शास्त्र पालन करो, मगर मैं कह रहा हूं कि यह इम्प्रैक्टिकल है। तो छोड़ने का मतलब नहीं गलत है, छोड़ने का मतलब है क्योंकि इम्प्रैक्टिकल है इसलिए छोड़ो, यू अंडरस्टैंड। तो कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है यहां पर, है नहीं, समझ गए, नहीं समझ गए। सो तो आप किसी को बोलो, बच्चे को समझाओ कि भी देखो बच्चों छोटे बच्चे, 2-3 साल के बच्चे की, देखो बच्चों गाड़ी चलाना कितना अच्छा होता है, गाड़ी कितनी अच्छी होती है, कितनी स्पीड पे चलती है, मगर बच्चों को सब गाड़ी के बारे में बता के मर्सिडीज है, रोल्स रॉयस है, बच्चे कहेंगे हाँ तो गाड़ी चलानी चाहिए और क्या करना चाहिए, तो आप एंड में क्या कहोगे, चलो मगर छोड़ दो गाड़ी चलाना, क्योंकि वो 2 साल का बच्चा वो इम्प्रैक्टिकल है। तो कहोगे यार आपने इतना सब कुछ मुझे क्यों बताया, ये सब गलत बताया गया, गाड़ी नहीं चलानी चाहिए, भैया सब कुछ सही है मगर अभी तुम्हारी एज नहीं है, अभी तुम नहीं कर सकते। सो ऐसे अभी युग एज बदल गई है, ये सारी चीजें पॉसिबल नहीं है। सो क्या पॉसिबल है, तब भगवान सॉल्यूशन दे रहे हैं कि क्या करना है। इस एज में एक ही तरीका पॉसिबल है, जिस तरह गोपियों ने भक्ति किया उसी तरह कर सकते हैं, मगर वो हमारे लिए ब्लेसिंग्स इन डिस्गाइज है। ब्लेसिंग डिस्गाइज समझते हो आप लोग? कैसे हिंदी में कैसे कहेंगे? छुपा हुआ आशीर्वाद है, ब्लेसिंग डिस्गाइज। मतलब ये समझ लो कि गोपियों की भक्ति टॉप मोस्ट है, और पहले युगों में लोग कर्मियों मर्यादा शास्त्र पालन करते 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 कई हजारों साल वर्ष युगों बाद गोपियों की भक्ति समझते थे। मग कलयुग में कितना फायदा हो गया, कलयुग में हम वो रास्ता तो कर ही नहीं सकते, मर्यादा वाला रास्ता है ना, शास्त्र समझ सकते ना कुछ कर सकते हैं, तो भगवान ने कहा डायरेक्ट टॉप मोस्ट लेवल पे आ जाओ, ब्लेसिंग डिस्गाइज हो गई। नहीं जैसे व्यासदेव ने बोला था, ऋषि मुनि व्यासदेव के पास आए, तो ऋषि मुनि डिस्कस कर रहे थे कि कलयुग में तो बहुत ही खतरनाक युग है, नहीं यहाँ तो मतलब मन विचलित करने के 1000 साधन है और वो हम खुद ही खरीद रहे, बड़े मजे की बात है, नहीं खुद ही, और माइंड कंट्रोल नहीं है, 1000 एंग्जाइटीज हैं, टेंशन है नहीं, बहुत कुछ। तो ऋषि मुनि डिस्कस कर रहे थे इतना गंदा ही हो गया, इससे हम बचेंगे कैसे, तो उन्होंने कहा व्यासदेव से पूछते हैं, तो व्यासादेव के पास गए, तो व्यासादेव वहां पे बैठ के नहा रहे थे और नहाते नहाते बोल रहे थे कलयुग सबसे महान योग है, कलयुग सबसे महान योग है। तो ऋषि मुनि ने कहा भैया हम तो अभी डिस्कस कर रहे थे सबसे यूजलेस योग है, ये व्यासदेव कह रहे सबसे महान है, ये हो क्या रहा है? तो व्यासदेव का सर उन्होंने कहा आप क्या कह रहे हो, उन्होंने कहा मुझे पता है तुम्हारा क्वेश्चन और उसका आंसर ये सबसे महान है, क्योंकि कलयुग में मुझे पता है सारे दोष है। कौन सा श्लोक है? कलेर दोष निधे राजन, कलयुग दोषों का सागर है, मगर अस्ति एको होए महान गुण, मगर एक महान गुण है, कीर्तन आदेवा कृष्णस्य, कृष्ण का कीर्तन करने से मुक्त संग जायते, मुक्ति आपके हाथ में है, ये महान गुण है कलयुग का। सो ये महान गुण सारे दोषों को पीछे छोड़ देते हैं, जैसे चंद्रमा की चांदनी जितने भी धब्बे हैं चंद्रमा पे उसको ढक देती है, उसको फिर भी चांदनी आती है, नहीं तो ब्लेसिंग डिस्गाइज नहीं। तो कलयुग में पैदा होना अच्छा है, सतयुग में वहां पे कोई दोष नहीं है, कलयुग में आना पहना अच्छा है, क्यों? इसलिए व्यासदेव ने कहा, भागवतम कह रही है सारे दिव्यता भी कलयुग में पैदा होना चाहते हैं, क्योंकि कलयुग में सारे दोष है मगर एक बहुत बड़ा महान गुण है। थोड़ा सा कर लोगे गोपियों की भक्ति, आपको इसी लाइफ में भगवान मिल गए। सत्य में कोई दोष नहीं है, मगर करोड़ों वर्ष आपको योग साधना, कर्मयोग, ज्ञान योग, ध्यान योग, मर्यादा के रास्ते चलना पड़ेगा, शास्त्र एग्जैक्टली फॉलो करना पड़ेगा, फिर जाके शायद गोपियों की भक्ति समझ आए, शायद फिर भी ना आए। सो बेस्ट इज अ बैड बार्गेन है, यहां पर चीजें रिस्क भी है क्योंकि दोष बहुत है, आप गिर सकते हो, डिस्ट्रैक्ट हो सकते हो, फॉल डाउन हो सकता है, 1000 तो प्रॉब्लम्स भी है लाइफ में, 1000 प्रॉब्लम्स रिलीजन में भी है, कोई गुरु कुछ है, कोई गुरु ये बोल रहा है, कोई ये है, कोई वो है, करोड़ों कन्फ्यूजन्स हैं, क्या करें क्या ना करें, तो प्रॉब्लम है, तो रिस्क भी है, मगर जहां रिस्क है वहां पर एक बहुत बड़ा महान गुण भी है। हो जाएगा तो यूं हो जाएगा, नहीं होगा तो कभी नहीं होगा, मतलब यहां पे या तो यहां या तो इस पार या उस पार, यहां ऐसा है। सतयुग में है कि आप करते रहोगे 99% चांसेस है पहुंच नहीं पाओगे, बहुत तपस्या, बहुत साधना। सो बेटर ये है, नहीं बिजनेस में भी तो ऐसे ही होता है, अच्छे बिजनेसमैन कौन बनते हैं, जो आर पार की फिलॉसफी से चलते हैं, नहीं जो सेफ फेल प्ले करते हैं ना, आराम चलते रहो, ठीक है धीरे धीरे, वो कभी बड़ा बिजनेसमैन नहीं बनता। बड़ा जो ये जो रिलायंस विलायंस वाले कैसे बने, रिस्क नहीं, भुवनेश रिस्क लेते नहीं लेते, सही कह रहा हूँ नहीं कह रहा हूँ, मैं बिजनेसमैन नहीं हूँ। जो रिस्क लेता है वो आगे बढ़ जाता है, जो नहीं लेता वो धीरे धीरे वहीं रेंगता रहता है, उसकी एक दुकान होगी वहीं पड़ा रहेगा। क्यों जनार्दन है नहीं, ये सारे बिजनेसमैन ही तो बैठे हैं, आप भी तो बिजनेस वुमेन हो। सो रिस्क है मगर पहुंचोगे सीधा ऊपर पहुंचोगे। इसलिए प्रभुपाद ने लेटर में बोला है कि शूट अ राइनोसायरस, शूट अ राइनोसायरस। राइनोसायरस पता है क्या होता है? हाँ गेंडा नहीं होता। प्रभुपाद बोल रहे थे अपने रिवोटी को। सो उन्होंने ये क्या है, तो प्रभुपाद ने बोला कि एक्चुअली राइनोसायरस को गोली मारना बड़ा मुश्किल है, उसकी चमड़ी आयरन से भी स्ट्रांग होती है, वो गोली घुसेगी नहीं, भगवान ने बनाया उसको ऐसा। सो आप कितनी गोली मार दो घुसेगी नहीं, मिसाइल मारोगे तो फूट जाएगा, वो तो बात अलग है, बट गोली मगर आप गोली तो, और उसको गोली यहीं मारनी होती है, यहाँ पे सॉफ्ट पोर्शन होते हैं, हाँ मगर यहाँ पे उसका हॉर्न है, उसको नहीं मार सकते। तो इसलिए प्रभुपाद ने कहा शूट अ राइनोसायरस, अगर आपको, अगर आपको कुछ नाम कमाना है तो आप राइनोसायरस को मारने जाओ, क्योंकि अगर वो मर गया तो लोग कहेंगे वाह भैया गेंडा मार दिया तुमने, क्योंकि आमना सामने करना ही मुश्किल है ना, अगर आप गोली नहीं लगी तो आप मर गए, अगर वो मर गया तो आप फेमस हो जाओगे, भैया ये तो सबसे बेस्ट शूटर है और बहुत दिलेर भी है, इसने गेंडा मार दिया, लो अवार्ड मिल जाएंगे आपको, मिल जाएगा। अगर नहीं मरा फिर भी फेमस हो जाओगे आप, क्योंकि यार गेंडे को मारने गया था, हमारी तो हिम्मत ही नहीं होती। दोनों कंडीशन में फायदा है। इसलिए प्रभुपाद, प्रभुपाद ने बोला बिजनेस, प्रभुपाद बिजनेसमैन थे ना, प्रभुपाद ही बिजनेसमैन थे, कि बिजनेसमैन को रिस्क ले लेना चाहिए, क्योंकि आपने रिस्क ले लिया, अगर रिलायंस वाला बन गया तो मजे ही मजे हैं, अगर नहीं बने तब भी लोग कहेंगे यार इसने रिस्क तो ली, कुछ किया तो इसने, वरना तो शॉप खोल के बैठा हुआ है। सो वेल दैट्स अ बिजनेस, बट भक्ति में भी ऐसा ही है। कलयुग में बेटर है नहीं, हम गोपियों की भक्ति फॉलो कर रहे हैं, ठीक है हमने फॉलो की, अगर हमें प्राप्त हो गई तो बहुत ही अच्छा है, नहीं प्राप्त हुआ फिर भी हमें कोई लॉस नहीं, क्योंकि हमने ट्राई तो किया, वरना तो कोई ऑप्शन भी नहीं है आपके पास, मर्यादा का तो ऑप्शन ही नहीं है, वो तो सब बंद है, वरना भोग में पड़े रहोगे, लोग फिर भी सराहना करेंगे एटलीस्ट इसने ट्राई किया और कुछ प्योर हम हो जाएंगे। इसलिए कलयुग में पैदा होना ज़्यादा बेटर है, ज़्यादा बेटर है। सो भगवान अपनी बात को कॉन्ट्रोडिक्ट नहीं कर रहे, समझ गए नहीं समझ गए, क्लियर हो नहीं हो गया, भगवान कह रहे हैं सब छोड़ दो क्योंकि इम्प्रैक्टिकल है और तुम नहीं कर पाओगे कलयुग में, यहाँ पे केवल एक ही रास्ता है गोपियों की भक्ति। अब गोपियों की भक्ति है क्या, दैट्स द क्वेश्चन, उसका आंसर भगवान ने गीता में भी कहा है और यहाँ पे भी बता रहे हैं, और वो सेम श्लोक है माम एकम एव शरणम। गीता में कौन सा श्लोक है? सर्वधर्मान् परित्यज्य माम एकम शरणम प्रजा, सेम है। कृष्णा कह रहे गोपियों की भक्ति क्या है, माम एकम शरणम, कि मेरी शरण ले लो। मगर शरण कॉन्सेप्ट जो है ना, अब शरण क्या होता है, दैट्स अ बिग थिंग, क्योंकि लोग समझते हैं शरण का मतलब कि थोड़े भजन गाना, थोड़ी मंडलियां बनाना और वृंदावन चले जाना, हो गया शरण, यही सही समझते हैं ना लोग। तो ये शरण शब्द क्या है, एक्चुअली शरण, अगर आप इस शब्द के बारे में बात करो तो आप कई किताबें लिख सकते हो इस पर, पूरी श्री वैष्णव संप्रदाय इस वर्ड पे ही बेस्ड है, शरण पे किताबें लिखी कि शरणागति क्या है, मगर भगवान बस दो लाइनों में बता रहे हैं शरण क्या है। कृष्णा इज गुड टीचर, नहीं टू द पॉइंट बोलते हैं, आप एसेंस समझ लो फिर आप अपना रिसर्च करते रहो, जो भी है एसेंस मत खोना कभी। सो क्या है, आत्मा नाम सर्वदेही नाम। कृष्णा कह रहे शरण का मतलब होता है कि सारे देही नाम, देही मतलब होता है सारे लोग, देही सारे लोग जीवों में आत्मा नाम मतलब होता है कि मुझे। शरण मतलब होता है गोपियां क्या है, हर जीव में वो मेरी अनुभूति कर रही है। सो पहला टिप ये है, शरण मतलब कि हर जीव में भगवान को देखना परमात्मा के रूप में, यूं समझ लीजिए कि हर जीव को भगवान का अंश समझना, यहां से शरणागति शुरू होती है बाय दिस नॉलेज. तो शरणागति शुरू होती है श्रवणम से, श्रवण. और क्या सुनना है, क्या बार बार सुनना है, ये सुनना है कि सब भगवान के अंश हैं, सब भगवान के दास हैं. इसमें कन्विक्शन आनी चाहिए. तो गोपियों को एक कन्विक्शन है, गोपियों को कन्विक्शन है कि यहाँ पे हर चीज भगवान की प्रॉपर्टी है, नहीं, और आत्मा भी भगवान की प्रॉपर्टी है. ईशावास्यम इदम सर्वम, सब कुछ लोग पता है, सब कुछ भगवान का है. सो बट द पॉइंट इज कि क्या करें सब जानकर कि सब कुछ भगवान का है, व्हाट टू डू. तो कह रहे हैं यही सर्व आत्मा भावेना, सेकंड टिप है शरण का, मतलब कि सब जानकर सर्व आत्मा भावेना, अपने पूरे भाव से, पूरी एनर्जी से, मन वचन वाणी से, सर्वात्मा पूरी तरह मेरी सेवा में संलग्न हो जाओ. सर्व आत्मा भाव, एक्चुअली सर्व आत्मा भाव है ना, टेक्निकल वर्ड है. तो इसके एक्सप्लेनेशन आप अपट पढ़ोगे तो इसमें लिखते हैं, सर्व आत्मा भाव है ना मतलब है कि अपने शरीर से, अपनी क्रियाओं से, पूरे भाव के साथ जब भगवान की सेवा की जाती है तो उसको सर्वात्मा भावना कहते हैं. सिर्फ मन से नहीं कि बैठे बैठे सोचते जा रहे हवा में, ये केवल भजनों से नहीं, क्रियाओं से सर्वात्मा भाव. सर्वात्मा शब्द लगाए क्रियाओं से, क्रिया प्रभुपाद भी लिख रहे हैं, पुरुषोत्तम आचार्य भी लिख रहे हैं, सारे आचार्य कमेंट इस पे कर रहे हैं. सर्वात्मा मतलब क्रियाएं, क्योंकि आत्मा मतलब, आत्मा मतलब क्या होता है संस्कृत में, संस्कृत में आत्मा का मतलब होता है आत्मा, सोल, सोल. मगर सर्व आत्मा मतलब होता है सारी आत्मा. सर मतलब सारा भी होता है, या सर मतलब क्या होता है, सर मतलब होता है कि आत्मा शब्द के जितने मतलब है वो सारे मतलब ले लो. तो प्रभुपाद लिख रहे हैं आत्मा शब्द के 6 मतलब है नहीं. आत्मा मतलब शरीर भी होता है, आत्मबल, आत्मा भी है, मन को भी आत्मा कहते हैं, आत्मबुद्धि, और शरीर को भी आत्मा कहते हैं, अपने प्रेमी को भी आत्मा कहते हैं, अपने पुत्र को भी आत्मा कहते हैं, नहीं कहते, नहीं कहते, दो शरीर है एक आत्मा, आत्मज कहते हैं, नहीं कहते. सो इसलिए भगवान कह रहे हैं सर्व आत्मा, अपने मन बुद्धि शरीर अहंकार, अपने पुत्र, अपने प्रेमी, जितने भी लोग हैं सब, सबके द्वारा मेरी सेवा करो. सर्व आत्मा भावेना, कुछ भी नहीं छूटना चाहिए तुम्हारी लाइफ में जिसके द्वारा मेरी सेवा ना हो. ये गोपियां हैं, उन्होंने सब कुछ भगवान को सरेंडर कर दिया और सब कुछ भगवान की सेवा में नियुक्त कर दिया, अपना हर विचार, अपने, अगर इसको समराइज करो, काया मनसा वाचा, शरीर से जो भी क्रियाएं हो रही है, मन से जो भी विचार हो रहा है, वाणी से आप जो भी बोल रहे हो, बस करते जाओ करते जाओ करते जाओ करते जाओ. ये बस सीक्रेट है, सिंपल है, गोपियां ही कर रही हैं बस, और कुछ नहीं कर रही. सो मया अस्य अकुतो भया, अगर कृष्ण कह रहे हैं अगर ऐसा करोगे तो अकुतो भया, तो भय से मुक्त हो जाओगे. मतलब ऐसा नहीं है कि भय खत्म हो जाएंगे, मगर भय होगा नहीं. ऐसा नहीं आपके चारों तरफ भय नहीं होगा. भय से मुक्त होने का मतलब नहीं कि आप भयानक स्थिति में नहीं हो. भय से मुक्त होने का मतलब है आप स्थिति वही है मगर आपको भय अब लग नहीं रहा. ऐसा नहीं कि आपकी सब लाइफ पूरी चेंज हो जाएगी, आप हवा में उड़ के एंजल बन जाओगे, ऐसा कुछ नहीं होगा. सिचुएशंस तो वैसी ही रहेंगी. अगर आपके घर में आपकी आपकी लड़ाई हो रही है आपके भाव भाई से, तो वो चलती रहेगी, या आपकी सास आपको डांट रही है, या आपकी लड़ाई आपके भाऊ से हो रही है, वो चलता रहेगा. हो गया, मैं तो शरण ले ली, लड़ाई बंदी नहीं हो रही घर में. ऐसा नहीं होने वाला, वो दैट्स यूजलेस. वो तो ढोंगी लोग आशीर्वाद देते हैं, सब ठीक हो जाएगा, कैसे ठीक होगा. सो वो सब चलता रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं. अगर आपकी बैंक अकाउंट में पैसे कम है तो अचानक से ज़्यादा नहीं होंगे. हम यहाँ पर निर्मल बाबा नहीं बन रहे, वो सब कंप्लीट नॉनसेंस है, वो सब बात नहीं हो रही. पॉइंट है कि अकुतो भैया मतलब सिचुएशंस वही रहेंगी मगर अफेक्ट होना, अफेक्ट नहीं होगा इन चीज़ों से. शरीर भी तो वही रहेगा, शरीर होना बदल जाएगा. सबसे भयानक चीज़ क्या है संसार में, ये शरीर. अगर आपको नहीं लगता तो पता लग जाएगा, जब जब वृद्ध हो गए तब पता लगेगा, जब बीमारियां आएंगी, चलेगा नहीं शरीर, तब पता लगेगा। सबसे भयानक चीज तो मतलब हम उसके अंदर ही बैठे हैं, बाहर तो चलो छोड़ो, ये शरीर ही जन्म का कारण है, मृत्यु का कारण है, बीमारी का कारण है। शरीर व्याधि मंदिर, हम ये भी सुने, शरीर बीमारियों का मंदिर है, घर नहीं मंदिर है। क्योंकि मंदिर को हम सजाते हैं ना, ऐसे ही शरीर को सजाते रहते हैं, मगर ये बीमारियों का मंदिर है, ये भी बोला गया है। मगर यूज भी है बहुत बड़ा, शरीर खलु साधनम, ये भी बोला जाता है, नहीं शरीर के बिना भक्ति भी नहीं कर सकते। सो हम फंसे पड़े हैं, नहीं इसको ना छोड़ने को बनता है, ना इसके साथ रहने को बनता है, ये प्रॉब्लम है, मतलब दिस शरीर इज अ प्रॉब्लम। सो इसलिए भयानक है, ना छोड़ सकते हैं ना रह सकते हैं, भयानक। ऐसी स्थिति बहुत भयानक नहीं आती, इसको आप ना छोड़ सकते हो ना रह, ना जी सकते हो ना मर सकते हो, वो सिचुएशन सबसे ज्यादा भयानक होती है, नहीं। सो दैट्स कृष्ण कह रहे हैं अकुतो भयम, इस भय से तुम मुक्त हो जाओगे अगर तुम गोपियों की तरह भक्ति करोगे। क्यों? क्योंकि गोपियों की तरह भक्ति करोगे तो शरीर विस्मृत हो जाएगा, आप सिचुएशंस में होंगे मगर आपको उसकी चिंता नहीं होगी, विस्मृति हो जाएगी। विस्मृति क्या क्या हो रहा है विकास? सो यू विल फॉरगेट, यू विल फॉरगेट। क्यों? क्योंकि आपका माइंड कहाँ एब्सॉर्ब्ड है? भगवान में एब्सॉर्ब्ड है। तो भगवान को एग्जांपल दे रहे कछुए का, तो कछुआ क्या हाथ निकालता है? नहीं निकालता है, चलना होता है हाथ पांव निकाल लेता है, जब नहीं होता तो फिर अंदर सिख घेट लेता है। तो ऐसे डिवोटी होता है, जब भी संसार में कोई नीडफुल काम है तो काम कर लेता है, वरना अपना आराम से बैठ के भजन और भगवान की भक्ति कर रहे, बस ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होता इन चीज़ों में। सो अननेसेसरी चीज़ें भूल जाता है वो, नहीं हज़ार चीज़ें तो हमने खुद बनाई हुई है ना, हज़ार झंझट तो हमने खुद ही बना रखे हैं अपने 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 हिसाब से। ये वो नहीं कह रहा था, वो अनंती कह रहा था मुझसे, उसका फ़ोन ख़राब हो गया तो व्हाट्सएप बंद हो गया। उन्होंने कहा भैया टेंशन ख़त्म हुई, मैं तो इतना मुक्त हो गया, मैं तो पागल हो गया था व्हाट्सएप कर करके, ख़राब हो गया, अब टेंशन ख़त्म हुई है। इसी खुद ही झंझट बना रखा था फेसबुक व्हाट्सएप का, मगर पता नहीं लगता, हम ऐसे हज़ार चीज़ें बना लेते हैं। भगवान पे फोकस करने से अननेसेसरी चीज़ें हम छूटती आती हैं, हमें पता लगता है यार इसकी भी क्या ज़रूरत है, इसकी क्या ज़रूरत है, बेकार में हमने चीज़ें कर रखी हैं। सो लाइफ सिंपल हो जाती है, सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग, तो उससे फिर आधा भय तो ऐसे ही चला गया, बाकी जो सिचुएशन है शरीर को तो नहीं त्याग सकते ना, शरीर में है मगर शरीर का भय नष्ट हो जाता है, क्योंकि हमें कन्विंस हो जाता है कि मैं शरीर नहीं हूँ। धीरे धीरे हमें पता लगाता है, अनुभव आ जाता है कि मैं सच्चिदानंद आत्मा हूँ, शरीर से परे हूँ, ये बेकार शरीर नहीं हूँ, बस काम खत्म, भय खत्म, दैट्स ऑल। सो एक्चुअली प्रभुपाद इस पर्पट में लिख रहे हैं कि भगवान ही बताना नहीं चाहते थे गोपियों की भक्ति, क्योंकि सीक्रेट है ना, मगर फिर भी भगवान से बताए बिना रहा भी नहीं है। इसलिए भगवान ने, आप भागवत पढ़ो, भगवान ने बहुत सारे डिस्कशन किए उद्धव से, ज्ञान योग कर्म योग ये सब मर्यादा की वो सब, मगर एंड में क्योंकि भगवान के हृदय में तो गोपियां ही है बस, और तो कुछ नहीं है, और गोपियों के हृदय में भगवान है। सो भगवान रह नहीं पाए और भगवान ने उद्धव को गोपियों की सीक्रेट बता दी, और अगर हम वो समझ जाएंगे तो हम भी संसार से इसी जीवन में बाहर हो जन्म मृत्यु से परे हो जाएंगे। और इसके बाद भगवान ने बस एंड कर दिया अपनी डिस्कशन, दिस इज द टॉप मोस्ट नॉलेज, टॉप मोस्ट नॉलेज का इसको बताने को रहा ही नहीं, एंड हो गया। फिर उद्धव उसके बाद बोल रहे हैं कि संशय श्रृणवतो वाचम, कि आपके वचनों से मेरा सारा संशय दूर हो गया। क्योंकि उद्धव कौन है? उद्धव बहुत बड़े शास्त्र ज्ञाता है। उद्धव के गुरु कौन है? बृहस्पति। उद्धव से ज्यादा शास्त्र किसी को आता ही नहीं, प्रवृत्ति निवृत्ति यम नियम, और उद्धव को ही भगवान ने बोला है सब छोड़ दो उसी। सो भगवान भी एक तीर से कई निशाने चलाते हैं ना, भगवान ने स्टूडेंट भी उद्धव को सुना चुना। अगर भगवान ये डिस्कोर्स अर्जुन को देते कि अर्जुन सबको छोड़ दो और गोपियों का, तो बात नहीं बनती नहीं, क्योंकि अर्जुन शास्त्रों में इतना प्रवीण नहीं है। सो अर्जुन कहता हाँ भगवान मैं छोड़ दूंगा, क्या प्रॉब्लम है, मुझे तो वैसे ही कम शास्त्र आते हैं, मैं तो इसमें एक्सपर्ट हूं, धनुष बाण में, शास्त्रों में थोड़े ना हूं। मैं तो उद्धव को बोलना ये वो बहुत बड़ी बात हो गई। नहीं, आप किसी एक्सपर्ट को बोलो, किसी एक्सपर्ट बिजनेसमैन को एडवाइस दो, है ये भी बिजनेस में छोड़ दो, तो उसने छोड़ दिया, एक्सपर्ट बिजनेसमैन है, तब लोग आपकी बात सुनेंगे नहीं सुनेंगे। हाँ यार, इन्होंने सेमिनार दिया था और रिलायंस वाले ने इनकी बात मान ली, तो हम भी बात मानेंगे नहीं, ऐसा होता है, नहीं होता है। अरे आपने सेमिनार दिया, टट्टू बंजू जनार्दन प्रभु आ गए, ये भुवनेश आ गया, इन्होंने बात मान ली, तो क्या है, तो इन्होंने बात मान ली तो मेरी वैल्यू भी कुछ नहीं है। आप कौन से बड़े लंबे चौड़े बिजनेस मैन हो। सो ऐसी भागवतम में उद्धव ने बात मान ली, बहुत बड़ी बात हो गई। उद्धव ने शास्त्रों को छोड़ के गोपियों की भक्ति का अनुसरण करने लगे, इसलिए भागवत में रिकॉर्डेड है उद्धव भगवान की डिस्कशन। एंड नाउ वी कैन टेक अप फॉर ग्रांटेड, अगर उद्धव ने मान ली जो इतने एक्सपर्ट है, तो हमें एक्सपर्ट बनने की जरूरत नहीं है शास्त्रों में, वी कैन टेक इट फॉर ग्रांटेड। यस, ही वॉज अ गुड शास्त्रज्ञ, इन्होंने मान ली और भगवान भी कह रहे हैं, सो सही होगा, एंड देन वी फॉलो, वी लाइक परफेक्ट कर लेते हैं। दैट्स ऑल, ये भागवत है। हरे कृष्ण, कुछ पूछना है, कुछ कहना है? I'll stop there.
गोपियों को तो बहुत जन्म लगे थे उस लेवल तक आने के लिए।
गोपियों को ही जन्म मिला था,
बहुत ऋषि विषि थे, मतलब अलग प्रकार के ऋषि बताए गए हैं, सिद्ध रूपी ऋषि को अन्य
गोपियां, कई टाइप की गोपियां से। सो कुछ गोपियां पिछले जन्म में ऋषि मुनि भी थी राम भगवान के टाइम, कुछ गोपियां तो बृहद वामन पुराण में लिखा है, एक्चुअली कृष्णा कह रहे हैं बृहद वामन पुराण में अर्जुन को, अर्जुन ये गोपियां साधारण स्त्री नहीं है, ये ऋषि पिछले जन्म की ऋषियां हैं और साक्षात श्रुति हैं, वेद। कुछ गोपियां ऋषि भी थी जो साधना करके आई हैं, कुछ गोपियां वेद का ही स्वरूप है, कुछ मतलब एक गोपी ऋग्वेद होगी, एक यजुर्वेद, सामवेद, कुछ स्मृति, वही रूप पूरा वही है, वही उस रूप में आई है। तो कुछ श्रुतिचारी गोपी हैं, श्रुतिचारी मतलब वेद, वेद का स्वरूप है, कुछ ऋषि मुनि वाली गोपी हैं, कुछ नित्य सिद्ध गोपियां हैं, कुछ हमेशा भगवान के रहती हैं, राधा, ललिता, विशाखा, वो भगवान खुद ही हैं, भगवान ने अपने आप को एक्सपैंड करके बने हैं, वो तो स्पेशल है नहीं। सो बहुत टाइप की गोपियां सी, करोड़ों, 16 करोड़ गोपियां, पता नहीं कितनी करोड़ गोपियां। सो भगवान यहाँ पे बता रहे हैं, ऋषि वाली गोपियों की बात नहीं कर रहे, जो श्रुतिचारी गोपी हैं, नित्य सिद्ध गोपियां, उनकी बात कर रहे हैं, उनकी भक्ति का फॉलो करो। ठीक है जी, ठीक है, क्लियर नहीं हुआ क्या? ये तो क्लियर नहीं हुआ,
लेकिन वो भी जो भगवान ने एक्सपेंशन भी करी है, नित्य सिद्ध गोपियां ये सब भी, तो वो मतलब भगवान की एक्सपेंशन है, हमारे अंदर तो वासनाएं इतनी है कि श्रुति नहीं,
वो एक्सपेंशन है मगर हमें भक्ति करके दिखा रही। एक 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 नर्सरी का टीचर क्या होता है उसकी क्वालिफिकेशन? ग्रेजुएट होता है, नहीं मिनिमम, तो क्या इसने तो ग्रेजुएट किया है, नर्सरी सब क्लास को कैसे समझा सकता है? ये कोई लॉजिक ही नहीं हुआ भैया। वो गोपियां हैं, नित्य सिद्ध, परफेक्ट है, मगर हमें समझा नहीं सकती क्या? जब गुड टीचर जितना परफेक्ट होंगे उतनी अच्छी टीचर होंगी, नहीं? सो दे आर बेस्ट टीचर्स, क्योंकि बेस्ट डिवोटी हैं, हमारे लेवल की बात समझा रही है हमें, देखो ऐसे भक्ति कर लो बस।
लेकिन वो जैसे करीब भगवत गीता है, भागवतम है, वेद पुराण है, सतयुग में क्या था, त्रेता युग में क्या था, ये सब चीजें तब था क्या?
सतयुग में सब परमहंस थे, सतयुग में सिर्फ वेद था, ऋग्वेद, यजुर्वेद, हां एक्चुअली एक ही वेद था, ऋग्वेद या कुछ लोग कहते हैं यजुर्वेद, एक ही वेद था, और वेद लिखा नहीं था, उनके माइंड में था, गुरु से सुन के अब वो फॉलो करते थे बस। सतयुग में ऐसे लोग नहीं थे, सतयुग में हजार डिस्कशन की जरूरत ही नहीं थी, सतयुग में कैसे लोग थे, गुरु के पास आया शिष्य, गुरु ने बोला जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख है, उसने कहा दुख है ठीक है, आंख बंद करके बैठे, अब मैं सत्य को जान के रहूंगा, उठा ही नहीं, कंकाल बन गया, हड्डी रह गई, फिर भी नहीं उठा, और जब तक सत्य प्राप्त नहीं होगा उठेगा ही नहीं, वहां सत्य में ऐसे लोग हैं, अब उनको क्या बताओगे, वो एक लाइन सुन के ही वो निकल गया,
उनके लिए जरूरत नहीं थी सर,
उनके लिए वो बहुत पहले इवॉल्व थे, ब्रह्मा जी ने बोला तो था अपने पुत्रों को, ब्रह्मा जी ने बोला अपने पुत्रों को कि तुम सृष्टि करो 10,000 पुत्रों को। नारद मुनि, नारद मुनि ने बोला कि देखो भैया तुम इतनी मेहनत करोगे सृष्टि करने में, इतनी मेहनत तुमने भगवान को प्राप्त करने में कर ली तो भगवान के पास पहुंच जाओगे। उन्होंने कहा ठीक है, आंख बंद करके बैठ गए, भगवान को प्राप्त कर लिया, काम खत्म हो गया उनका। इट्स एज सिंपल। फिर ब्रह्मा जी ने दोबारा से पुत्र पैदा किए, 1,000 पुत्र। भैया नारद ने इनको स्पॉइल कर दिया, सृष्टि कर नहीं पा रहा। उन्होंने 1,000 पुत्र को उन्होंने कहा तुम सृष्टि करो। नारद मुनि, नारद मुनि ने कहा भैया देखो सबसे बड़ा धर्म क्या है, अपने बड़े भाइयों का रास्ता फॉलो करना। उन्होंने कहा ठीक है, वो भी आंख बंद करके बैठ गए, वो भी निकल गए। सो उनके लिए एक एक लाइन ही काफी होती है, हम लोगों के लिए 1,000 बार बार सुनना पड़ता है फिर भी समझ फिट नहीं होती चीजें। सो हमारा खेल है, वहां पे बात ही अलग थी, कोई हम इमेजिन भी नहीं कर सकते सतयुग क्या है। सिद्धार्थ, सो दैट्स अ पॉइंट। ओके, और कोई क्वेश्चन है? अदरवाइज लेट मी स्टॉप
नाउ। इसमें आप कौन सा भाग है?
ना भोग का मार्ग है ना त्याग का मार्ग है,
तो
हमारा मार्ग है भक्ति का, सेवा का।
तो चीजों को तो यूज ही कर रहे हैं।
नहीं, हम ना जैसे टेबल है, हम ना टेबल को भोग कर रहे हैं, अपने लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, ना त्याग कर रहे हैं योगी ज्ञानियों की तरह गेट लॉस्ट। हमने इसको भगवान की सेवा में इस्तेमाल कर दिया। तीसरा मार्ग है, ये गोपियों का मार्ग है, भक्ति मार्ग। प्रवृत्ति निवृत्ति शास्त्रों में दिया है, या तो एंजॉय कर लो, मतलब या तो इस टेबल को शास्त्रों के अनुसार इस्तेमाल कर लो। ठीक है, तो शास्त्रों में क्या दिया है आप इस, मुझे पता नहीं क्या दिया इस टेबल के बारे में, बट लेट अस गिव अनदर एग्जांपल। या तो आप शास्त्रों के अनुसार गृहस्थ आश्रम में एंटर हो जाओ, दिया है अभी ब्रह्मचारी गृहस्थ, विवाह करो, संस्कार होगा, सारा चीजें होंगी, या आप गृहस्थ आश्रम को त्याग दो ब्रह्मचारी के बाद सीधा, तो हमने गृहस्थ भी त्याग दिया, सन्यासी बन गए। भक्ति के दोनों रास्ते नहीं है, सेवा का रास्ता है। अगर भगवान की सेवा के लिए गृहस्थ आश्रम अनुकूल है तो विवाह कर लो, अगर प्रतिकूल है तो छोड़ दो। सो हमारे लिए ना छोड़ना ना लेना दोनों इंपॉर्टेंट नहीं है, हमारे लिए सेवा इंपॉर्टेंट है। सेवा में यूज हो रहा है तो ठीक है, सेवा में इस्तेमाल नहीं कर सकते तो दैट्स ओके। हम हर चीज सेवा में इस्तेमाल कर लेते हैं, पॉइंट है। कुछ चीजें सेवा में इस्तेमाल नहीं हो सकती, शराब नहीं हो सकती, तो हम शराब छोड़ देते हैं। हमारा बेंचमार्क सेवा है, न भोग है न त्याग है। सो ये तीसरा रास्ता है सेवा का, इट्स नॉट Neither of them. ये हम लोग हैं। Okay, so that's it. शुरुआत कहाँ से होगी गोपियों के राष्ट्र भक्ति की? श्रवणम मननम निधि ध्यासनम, ये भी कोट कर रहे हैं यहाँ पर। So अगर गोपियों की भक्ति सीखनी है तो ये चीज करनी है, श्रवणम, पहले सुनो, सुनो। गोपियां एक दूसरे सुनी रही है बस, दैट श्रवणम। श्रवण तब तक करते रहो जब तक ज्ञान नहीं आ जाए, जब तक ये ज्ञान नहीं आ जाए कि सब कुछ भगवान का है, मैं आत्मा हूं शरीर नहीं। जब तक ये नहीं आ जाए तब तक सुनते रहो, जब तक अनुभव नहीं हो जाए तब तक सुनते रहो, सुनते रहो बार बार। इसलिए आवृत्ति करनी पड़ती है। तो भगवान कह रहे हैं जैसे भूसे को पीटा जाता है फिर निकलता है ना धान, तो बार बार अपने मन को पीटना होता है। सुनते रहो, श्रवणम श्रवणम, सुनते रहो सुनते रहो। श्रवण तब तक सुनते रहो जब तक ज्ञान ना हो जाए, और जब ज्ञान हो जाएगा तो क्या करोगे फिर उसके बाद? मननम। तो मननम मतलब चिंतन। तो तब तक मननम करते रहो जब तक सारे संशय दूर ना हो जाए। ज्ञान आ गया तो संशय भी तो आएंगे, ऐसे थोड़े ना सब कुछ क्लियर हो जाएगा। आपने सुना कि भाई भगवान का नाम सर्वश्रेष्ठ है, हम आत्मा शरीर नहीं, आप संशय आ गया, मुझे तो दिखाई नहीं दे रही आत्मा, और नाम लेने से मुक्ति मिल जाएगी, और भी तो बहुत सारी चीजें हैं, तो संशय आएंगे। तो मननन तब तक करते रहो जब तक संशय नष्ट ना हो जाए, और फिर जब संशय नष्ट हो जाएंगे तो क्या करोगे? तो निधि ध्यासनम, तब ध्यान। ये ध्यान वो वाला ध्यान नहीं है योगी वाला, ये ध्यान मतलब जब सब कुछ क्लियर हो जाएगा तो उस क्लियर नॉलेज पे ध्यान लगाओ, फोकस करो अपने माइंड को फोकस, और तब तक ध्यान करते रहो इस नॉलेज का जब तक भगवान के दर्शन ना हो जाए। ये तरीका है श्रवणम, ये गोपियों का तरीका है। इसलिए हम लोग वो लेक्चर सुनते हैं, और ऑफ कोर्स सुनकर अंदर डालने के लिए भगवान का नाम लेते हैं। भगवान का नाम नहीं लोगे तो यहाँ से जाएगा और अंदर जाएगा ही नहीं। श्रवणम कीर्तनम फिर मननम चालू हो जाएगा धीरे धीरे और फिर निधि ध्यान लगने लगेगा। भगवान चलते फिरते माइंड में चलने लगेगी चीज़ें और फिर दर्शन हो जाएंगे। बस गुजर से गोपियों को दर्शन हुए बस फिनिश होंगे। हरे कृष्ण श्री प्रभुपाद की जय।